एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे पेचीदा परंपराओं में से एक को समझने में हमारी मदद करती है।
नमस्ते। हाँ, हम बात कर रहे हैं लुई रेनो की संपादित किताब हिंदू धर्म की। और ये विषय सिर्फ कोई अकेडमिक दिलचस्पी का नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में जहाँ इतनी संस्कृतियाँ घुल मिल रही हैं, इसे समझना मुझे लगता है और भी अहम हो गया है।
बिल्कुल, आजकल हिंदू धर्म की चर्चा तो खूब होती है, पर अक्सर वो थोड़ी सतही सी लगती है।
हाँ, ऊपरी तौर पर।
ये किताब उसे कहीं गहरे जाने का वादा करती है। मतलब इसका लक्ष्य ये है कि हिंदू धर्म को किसी बाहरी फ्रेम से न देखकर उसके अपने अंदरूनी लॉजिक उसके ग्रंथों के जरिए समझा जाए।
सही कहा, और यही बात इसे खास बनाती है। ये सिर्फ रस्मों रिवाजों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच, एक दर्शन को पकड़ने की कोशिश है।
हाँ, तो इस कोशिश के पीछे जो दिमाग हैं लुई रेनो, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कौन थे ये, क्या खासियत थी इनकी?
लुई रेनो 1896-1966 फ्रांस के एक बहुत बहुत ही सम्मानित भारतविद इंडोलॉजिस्ट थे
हाँ,
और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आप सोचिए, 20वीं सदी में पेरिस की सॉर्बोन जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे,
अच्छा,
और उनकी पकड़ सिर्फ संस्कृत पर नहीं थी, बल्कि वैदिक साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है, हिंदू दर्शन है, इन सब पर उनकी कमाल की पकड़ थी।
और मैंने सुना है कि वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थे, वो भारत भी आए थे।
जी हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उन्होंने यहाँ आकर पारंपरिक पंडितों के साथ बैठकर सीखा। मतलब भाषाओं पर उनका अधिकार सिर्फ किताबी नहीं था, बल्कि जीवंत था। संस्कृत, पाली और यहाँ की कई आज की भाषाएं भी वो जानते थे।
तो ये जो उनका ज्ञान था, जो अनुभव था, इसी वजह से वो इस किताब को एडिट करने के लिए सही व्यक्ति थे।
बिल्कुल, कई कारण हैं। एक तो, जैसा हमने कहा, भाषा पर उनकी सीधी पकड़। वो अनुवादों पर निर्भर नहीं थे, वो मूल टेक्स्ट को समझ सकते थे। दूसरा, उनकी अकादमिक ईमानदारी। वो कोशिश कर रहे थे कि हिंदू धर्म को पश्चिमी सांचे में फिट ना करें, बल्कि उसे उसी के अपने कॉन्टेक्स्ट में, उसके अपनी शर्तों पर पेश करें।
मतलब ना तो उसे कोई अजीब, अनोखी, एक्जॉटिक चीज बनाकर पेश करना और ना ही उसे कम आंकना।
बिल्कुल, बस उसकी जो अपनी बनावट है, जो उसकी सोच है, उसे सामने रखना, ना खारिज करना, ना आंख मूंद कर भक्ति करना। उनका जोर था कि इसकी जो आंतरिक तर्कसंगतता है, जो आध्यात्मिक गहराई है, उसे समझें और समझाएं।
और संपादक के तौर पर अकेले ही किया उन्होंने ये सब?
नहीं, उन्होंने शायद जीन फिलियोजैट और एनी मैरियस नोल जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया, ताकि ये किताब टेक्स्ट के प्रति, मूल स्रोतों के प्रति पूरी तरह वफादार रहे। ये वाकई एक गंभीर प्रयास था इस जटिल विषय को संजीदगी से पेश करने का।
तो अब आते हैं किताब पर ही। ये हिंदू धर्म को किस तरह से देखती है, इसका सार क्या है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये किताब हिंदू धर्म को कोई एक पत्थर की लकीर की तरह नहीं देखती। मतलब कोई एक फिक्स्ड सिद्धांत या डॉगमा नहीं,
अच्छा,
बल्कि इसे एक बहती हुई नदी की तरह देखती है, एक गतिशील, हमेशा विकसित होती जीवन पद्धति जिसे धर्म कहा गया। और इसकी पहचान किसी एक खास पैगंबर या एक अकेली किताब में नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े फैले हुए साहित्य में है।
ये दिलचस्प नजरिया है। तो मतलब किताब का मेन पॉइंट ये है कि अगर हिंदू धर्म को सच में समझना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस उसके मूल ग्रंथों को पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा।
हाँ, काफी हद तक यही बात है। रेनो और उनके साथी ये दिखाते हैं कि हिंदू धर्म में जो इतनी ज्यादा विविधता दिखती है, या कभी कभी लगता है कि बातें एक दूसरे के उलट हैं।
हाँ, विरोधाभास जैसे लगते हैं।
बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि ये इसकी कमजोरी नहीं है, असल में यही तो इसकी पहचान है। यह हजारों सालों से चले आ रहे जो रहस्योद्घाटन हैं, जो विचार हैं, उनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, और फिर उनका आपस में मिलना जुलना, सिंथेसिस, उसका नतीजा है ये विविधता।
मतलब अलग अलग विचार टकराए, मिले, उनसे कुछ नया बना, ये प्रक्रिया चलती रही।
बिल्कुल, ये किताब कोशिश करती है कि हम पश्चिमी खांचों से बाहर निकलकर हिंदू सोच, उसकी रीति रिवाज, उसकी संस्कृति की इस बहुआयामी, मल्टीलेयर्ड प्रकृति को समझें। पाठक को सीधे उन स्रोतों तक ले जाती है जहां से ये विचार पैदा हुए और बढ़े।
ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं, किताब के अंदर चलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शायद वेदों से।
हाँ बिल्कुल, सबसे पुरानी परत वेद, जिन्हें श्रुति कहते हैं, यानी जो सुना गया, जिसे ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है, खासकर ऋग्वेद। इसमें हमें शुरुआती आर्यों की दुनिया की झलक मिलती है, जहां प्रकृति की जो बड़ी शक्तियां हैं, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, ये सब जैसे जीवित देवता हैं।
अच्छा, और यहाँ कोई खास विचार जो बहुत महत्वपूर्ण हो?
दो कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम हैं। एक है ऋत, ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है कह सकते हैं। ब्रह्मांड की वो अंदरूनी, नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था जिससे सब कुछ सही ढंग से चलता है। देवता भी इसके अधीन हैं, वो बस इसके रखवाले हैं।
और दूसरा?
दूसरा है यज्ञ। ये सिर्फ आज के हवन जैसा नहीं था, ये बहुत ही जटिल विस्तृत अनुष्ठान था। इसका मकसद था ऋत को बनाए रखना, देवताओं को शक्ति देना और दुनिया में संतुलन और समृद्धि लाना। यज्ञ को एक तरह से ब्रह्मांड का छोटा रूप, एक माइक्रोकॉस्म माना जाता था।
तो शुरुआत हुई बाहरी कर्मकांड और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की समझ से, लेकिन हमने सुना है कि हिंदू विचार में फिर एक बड़ा बदलाव भी आया, एक दार्शनिक मोड़।
बिल्कुल सही। वैदिक कर्मकांड के बाद जो दौर आता है वो है उपनिषदों का। ये हिंदू सोच का एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल टर्न है। यहाँ फोकस बाहरी यज्ञों से हटकर अंदर की खोज पर, आत्मज्ञान पर चला जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या उनका सार।
और इस अंदर की खोज में क्या खास मिला? उपनिषदों का मुख्य संदेश क्या है?
उपनिषदों के जो ऋषि थे वो दुनियावी चीजें या देवताओं से वरदान मांगने की बजाय परम सत्य की तलाश में थे। यहां से कुछ बहुत ही गहरे फंडामेंटल विचार निकले, जैसे ब्रह्म, वो एक परम निराकार न बदलने वाली सच्चाई जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है, और आत्मा यानी हमारी अपनी चेतना, हमारी इंडिविजुअल आत्मा, जो अपने असल रूप में, अपने एसेंस में उसी ब्रह्म का हिस्सा है, उससे अलग नहीं है।
यहीं से वो प्रसिद्ध महावाक्य आता है, तत् त्वम असि।
हाँ, तत् त्वम असि यानी वो तुम ही हो। ये उपनिषदों का जैसे निचोड़ है कि तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड की परमात्मा वो एक ही है। इसी के साथ कर्म और संसार के विचार भी मजबूत होते हैं, यानी हमारे कर्मों का नतीजा हमें मिलता है और हम जन्म मृत्यु के एक चक्र, संसार में घूमते रहते हैं।
और इस चक्र से निकलने का रास्ता
वो है मोक्ष, यानी मुक्ति, लिबरेशन। और ये मिलती है इसी ज्ञान से, इसी अनुभव से कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं। जब ये एहसास हो जाता है तो संसार का चक्र टूट जाता है।
ये तो बहुत ही गहरी फिलॉसफी है, लेकिन धर्म सिर्फ फिलॉसफी तो नहीं होता है, उसका समाज से भी गहरा नाता होता है। किताब इस बारे में क्या कहती है?
बिल्कुल, उपनिषदों के बाद स्मृति साहित्य का दौर आता है, यानी जो याद रखा गया। इसमें खास तौर पर धर्मशास्त्र आते हैं, जैसे मनुस्मृति। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ थोड़ा और फैलता है, ये बन जाता है सामाजिक कर्तव्य, नियम, कानून, नैतिकता, वो सारी चीजें जो समाज को सस्टेन रखती हैं, उसे धारण करती हैं।
अच्छा, तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता था?
हाँ, ये धर्म हर व्यक्ति के लिए उसकी समाज में स्थिति यानी वर्ण और जीवन की अवस्था यानी आश्रम के हिसाब से अलग अलग होता था।
वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, इनका जिक्र भी यहीं आता है।
जी, वर्ण व्यवस्था का जो सैद्धांतिक आधार है, समाज के चार वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन्हें मूल रूप में समाज चलाने के लिए जरूरी अलग अलग कामों और गुणों के आधार पर देखा गया था। ये एक तरह से समाज में सामंजस्य लाने का तरीका था। हाँ, ये बात और है कि बाद में इसका रूप बहुत बिगड़ा और वो कठोर जाति व्यवस्था बन गया, जो एक अलग और बहुत जटिल ऐतिहासिक मुद्दा है।
और आश्रम?
आश्रम व्यवस्था यानी जीवन के चार आदर्श पड़ाव, ब्रह्मचर्य, शिष्य जीवन, शिक्षा, गृहस्थ, पारिवारिक जीवन, जिम्मेदारियां, वानप्रस्थ, समाज से थोड़ा हटकर चिंतन और संन्यास, सब कुछ त्याग कर सिर्फ मोक्ष की साधना। ये एक तरह का रोडमैप था कि कैसे इंसान अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां निभाते हुए धीरे धीरे आध्यात्मिक लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ बढ़ सकता है।
लेकिन ये जो उपनिषदों वाली बातें थीं, ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, ये तो आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल रहा होगा। क्या ये विचार सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह गए?
नहीं, यहीं पर महाकाव्यों और पुराणों का बहुत बड़ा रोल आता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ सिर्फ राजा रानियों की कहानियां नहीं है, ये धर्म, नैतिकता, कर्तव्य, मानवीय रिश्ते, इन सबको कहानियों, किरदारों और घटनाओं के जरिए समझाते हैं। इन्होंने उन गहरी अमूर्त बातों को आम लोगों तक पहुंचाया।
और भगवद गीता का क्या स्थान है इसमें? वो तो महाभारत का ही एक हिस्सा है।
हाँ, और गीता तो अपने आप में एक अजूबा है। ये उपनिषदों के ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी की दुविधाओं से जोड़ती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का एक अद्भुत संतुलन है। गीता खास तौर पर तीन रास्ते बताती है मोक्ष तक पहुंचने के। ज्ञान योग, ज्ञान के जरिए, कर्म योग, बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाना, और भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण।
कर्म योग और भक्ति योग शायद ज्यादा लोगों के लिए सुलभ रहे होंगे।
बिल्कुल, खासकर भक्ति योग, और पुराणों ने इसमें बहुत मदद की।
पुराणों ने कैसे?
पुराणों ने ईश्वर के साकार रूपों को लोकप्रिय बनाया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, इनकी कहानियां, इनके अलग अलग अवतार, इनके चमत्कार, ये सब पुराणों में भरे पड़े। यहीं से भक्ति आंदोलन को जबरदस्त बल मिला। किसी एक ईश्वर रूप जैसे कृष्ण, राम, शिव या देवी माँ के प्रति गहरा व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण, ये भक्ति का रास्ता बन गया। और ये रास्ता सबके लिए खुला था, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री। इसने आध्यात्मिकता को सही मायने में ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया।
तो मतलब मुक्ति के कई रास्ते बताए गए, ज्ञान, कर्म, भक्ति। किताब इन सबको कैसे देखती है? क्या कोई एक रास्ता बेहतर है?
नहीं, किताब यही दिखाती है कि ये अलग अलग रास्ते मंजिल एक ही तरफ ले जाते हैं, मोक्ष। ये व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा रास्ता ज्यादा सूट करता है। ज्ञान योग शायद उनके लिए जो बहुत चिंतनशील हैं, कर्म योग उनके लिए जो दुनिया में सक्रिय रहकर काम करना चाहते हैं, और भक्ति योग उनके लिए जो भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। भक्ति को अक्सर सबसे सहज और आसान रास्ता माना गया है।
और वो छह दर्शन, षट दर्शन, उनकी भी बात आती है, न्याय, वैशेषिर।
हाँ, उनका जिक्र आता है क्योंकि वो भी हिंदू विचार परंपरा का हिस्सा है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। लेकिन किताब ज्यादा ध्यान वेदांत पर देती है, खासकर आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पर, क्योंकि ये सीधे उपनिषदों की उस मूल बात, आत्मा और ब्रह्म एक हैं, को ही दार्शनिक आधार देता है, और हिंदू सोच पर इसका प्रभाव बहुत गहरा रहा है।
सच में, ये तो विचारों का एक महासागर है। अगर हम इस पूरी बातचीत से, या कहें कि इस किताब से, कुछ सबसे अहम संदेश या थीम निकालने की कोशिश करें, तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और शायद सबसे खास बात है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हिंदू धर्म की पहचान है। इसमें अनगिनत मान्यताएं, पूजा के तरीके, देवी देवता, दर्शन, सब एक साथ रहते हैं, और ये कोई कन्फ्यूजन या गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इसकी बनावट ही ऐसी है जो अलग अलग तरह के सत्यों को अपने अंदर जगह देती है।
हाँ, ये तो हम आपके आसपास रोज ही देखते हैं, एक ही त्योहार को अलग अलग जगह कितने अलग तरीकों से मनाया जाता है।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात, ग्रंथों और अनुभव, दोनों का बराबर महत्व। हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं, वेदों में, शास्त्रों में, श्रुति और स्मृति। लेकिन सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना, उसे महसूस करना, ये भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए गुरु की भूमिका, ध्यान या योग का अभ्यास, ये सब अनुभव पर जोर देते हैं।
सही कहा। तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा है बाहरी कर्मकांड से अंदरूनी एहसास की तरफ विकास। हमने देखा कि कैसे वैदिक योगियों से शुरुआत हुई और फिर जोर धीरे धीरे आत्मज्ञान, आंतरिक शुद्धि और ईश्वर के अनुभव पर चला गया। मतलब धर्म सिर्फ बाहर का दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा ज्यादा है।
और
चौथी बात, धर्म का व्यापक अर्थ। ये सिर्फ पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है, धर्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारा कर्तव्य, हमारी नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, न्याय, और यहाँ तक कि वो नियम जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं, जैसे रित, वो सब शामिल है। अपना काम ठीक से करना भी धर्म का हिस्सा है।
और आखिरी पांचवा पॉइंट,
वो है मोक्ष की केंद्रीयता। जीवन का जो परम लक्ष्य है, वो है इस जन्म मृत्यु के चक्र, संसार से मुक्ति पाना। रास्ते भले ही अलग अलग हो, ज्ञान, कर्म, भक्ति, मंजिल सबकी वही है। ये जीवन के पार देखने की एक दृष्टि देता है।
ये सारे बहुत गहरे विचार हैं। क्या किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खास तौर पर याद रह जाते हैं, जो इन बातों का निचोड़ हों?
हाँ बिल्कुल, कई ऐसे विचार हैं जो हिंदू सोच की आत्मा को पकड़ते हैं। जैसे ऋग्वेद की वो बहुत प्रसिद्ध लाइन है, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं।
एकम सत विप्रा बहुधावनन्ति।
इसका क्या मतलब हुआ? ये लाइन हिंदू धर्म के खुलेपन और सहिष्णुता का आधार है। ये कहती है कि परम सत्य शायद इतना विशाल है कि कोई एक नाम या परिभाषा उसे पकड़ नहीं सकती, इसलिए अलग अलग लोग, अलग अलग ज्ञानी उसे अपने अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग नाम देते हैं, और ये सब उसी एक सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं।
बहुत सुंदर। और वो उपनिषदों वाला तत्त्वतोमसि,
तत्त्वतोमसि, तुम वही हो, ये तो जैसे एक धमाका है। ये कहता है कि तुम यानी तुम्हारी जो असली आत्मा है वो उस परम ब्रह्मांडीय चेतना ब्रह्म से अलग नहीं है, तुम वही हो। सारी दिव्यता, सारा सत्य तुम्हारे अंदर ही है, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। मोक्ष का मतलब है बस इस सच्चाई को जान लेना, अनुभव कर लेना।
और गीता का वो कर्मयोग वाला संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये आज के समय के लिए शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सलाह है। अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ पूरी लगन और ईमानदारी से, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा उसकी चिंता में मत पड़ो। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर हम इस तरह से काम करें तो शायद हम ज्यादा शांत रह सकते हैं, ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि हम नतीजे के तनाव से मुक्त हो जाते हैं।
ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या रोजमर्रा की जिंदगी में, आज की भागदौड़ में इन बातों का कोई वाकई मतलब है? इन्हें लागू कैसे किया जा सकता है?
क्यों नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे गीता का कर्म योग वाला विचार ही लीजिए। आज की दुनिया में स्ट्रेस कितना ज्यादा है, काम का, रिश्तों का, भविष्य का। अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि अपना बेस्ट दे पर नतीजे को लेके बहुत ज्यादा परेशान ना हो, उससे चिपके ना रहें।
हाँ, डिटैच्ड होके काम करना।
हाँ, तो क्या जिंदगी थोड़ी आसान और शांतिपूर्ण नहीं हो जाएगी? इसे आजकल लोग माइंडफुलनेस भी कहते हैं, जो कर रहे हैं उस पे पूरा ध्यान देना नतीजे की चिंता किए बिना।
और वो धर्म वाली बात सही गलत का फैसला लेने में कैसे मदद करती है?
धर्म हमें ये नहीं बताता कि हर सिचुएशन का एक रेडीमेड जवाब है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हालात क्या हैं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे रिश्तों का क्या होगा, मेरे फैसले का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपनी क्षमता को पहचानना, इन सबको ध्यान में रखकर ही हम ज्यादा नैतिक, ज्यादा धार्मिक फैसला ले सकते हैं।
और वो आत्मा वाली बात, उसका क्या फायदा ना आज?
अगर हम ये महसूस करें कि हमारी असली पहचान सिर्फ हमारा नाम, हमारा जॉब, हमारी शक्ल या हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि हमारे अंदर कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा स्थायी है, जिसे आत्मा कहें या चेतना, तो शायद हम दुनिया की छोटी मोटी हार जीत से कम प्रभावित होंगे।
सही बात है।
हम शायद अपनी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों में, जैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाना धर्म, अपनी जरूरतें पूरी करना अर्थ, जीवन का रस लेना काम, और आत्मिक शांति या मोक्ष की तलाश करना, एक बेहतर संतुलन बना पाएं।
और समाज के लेवल पर वो विविधता में एकता वाली सोच,
वो तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया में कितने मतभेद हैं, कितनी लड़ाइयां हैं, अगर हम ये समझ पाएं कि अलग अलग रास्ते भी एक ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अलग अलग नजरिए भी अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं,
तो शायद हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा सहनशील होंगे।
बिल्कुल, हम दूसरों के विचारों का, उनकी मान्यताओं का ज्यादा सम्मान कर पाएंगे, असहमति के बावजूद साथ रहना, बातचीत करना सीख पाएंगे। ये सोच इंटरकल्चरल डायलॉग के लिए बहुत मददगार हो सकती है।
सच कहूं तो इस पूरी चर्चा से मुझे जो सबसे बड़ी बात समझ आई वो ये है कि हिंदू धर्म कोई एक अकेली ठोस चीज नहीं है। ये तो जैसे एक बहती हुई नदी है जिसमें कितनी सारी धाराएं आकर मिलती हैं, कितने अलग अलग विचार हैं, और ये किताब उन सबको बिना किसी को कम या ज्यादा बताए एक साथ देखने की कोशिश करती है। ये जो जटिलता है, यही शायद इसकी खूबसूरती और ताकत है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि कैसे इतने गहरे, इतने गूढ़ दार्शनिक विचार, जैसे उपनिषदों के, वो भी कहानियों, मिथकों और भक्ति के जरिए आम लोगों की जिंदगी का, उनकी रोजमर्रा की सोच का हिस्सा बन गए। ज्ञान सिर्फ कुछ खास बुद्धिजीवियों की जागीर नहीं रहा। रेनो की ये किताब हमें याद दिलाती है कि किसी परंपरा की जो जाहिर विविधता या अंतर्विरोध हमें दिखते हैं, उन्हें उसकी कमजोरी समझने की बजाय उसकी गहराई, उसकी लचक और उसकी जिंदा दिली का सबूत मानना चाहिए।
जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी परंपरा का विकास समझना, जैसे हमने देखा कर्मकांड से दर्शन और फिर भक्ति तक का सफर, क्या ये जानकारी आज हमारे लिए उस परंपरा से जुड़ने के मायनों को, उसके मतलब को बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।